राधा माधव कुंज बिहारे, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारे, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारे, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना पीरावन चारे, यमुना यमुना पीरावन चारे, राधा माधव कुंज बिहारे, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारे, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना पीरावन जारे, यमुना यमुना पीरावन जारे, जय राधा माधव कुंज बिहारे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय देवा जय सुभद्रा। जय गौरनिताय गौरानिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। नीलकर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नीलकर हरि बोल।
परिपुराज कचार्य अष्टोतरिषद शिष्य मद भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिपुराज कचार्य अष्टोतरिषद शिष्य मद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जय। उपस्थित भक्त वृंद की जय। उपस्थित भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भागवत सार की श्रृंखला में पांचवें स्कंद के छठे अध्याय पर आज चर्चा है। इसके तीसरे श्लोक को पढ़ेंगे। कृपया दोहराइए। तथा चोक्तम न कुर्यात् कर्हि चित्सख्यम् मनसि ह्यनवस्थिते यद्विश्रम्भाचराचीर्णम् च स्कन्द तप ऐश्वरम् तथा चोक्तम् न कुर्यात् कर्हि चित्सख्यम् मनसि ह्यनवस्थिते यद्विश्रम्भाचराचीर्णम् च स्कन्द तप ऐश्वरम् तथा चोक्तम् न कुर्यात् कर्हि चित्सख्यम् मनसि ह्यनवस्थिते यद् विश्रम्भाचिराचीर्णम् च स्कन्द तप ऐश्वरम् न कुर्यात् कर्हिचित् सख्यम् तथा इस प्रकार च और उक्तम कहा गया है न कदापि नहीं कुर्यात् करना चाहिए कर्हिचित् किसी समय या किसी से सख्यम मित्रता मनसि मन से ही निश्चय ही अनवस्थिते चंचल यत् जिसमें विश्रम्भा अत्याधिक विश्वास करने से चिरात दीर्घ काल तक चीर्णम अभ्यास की गई चस्कंद विचलित हो गई तपह तपस्या ऐश्वरम शिव तथा सौभरी जैसे महापुरुषों की। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। सभी विद्वानों ने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं। मन स्वभाव से अत्यंत चंचल है, मनुष्य को चाहिए कि वे इससे मित्रता न करें। यदि हम मन पर पूर्ण विश्वास करते हैं तो यह किसी क्षण धोखा दे सकता है। यहाँ तक कि शिवजी श्री कृष्ण के मोहिनी रूप को देखकर उत्तेजित हो उठे और सौभरी मुनि भी योग की सिद्ध अवस्था से च्युत हो गए। तात्पर्य, जो आत्म जीवन में आगे बढ़ना चाहता है उसका पहला कार्य होगा कि अपने मन तथा इंद्रियों पर संयम रखे। जैसा कि भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ममय वांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। यद्यपि जीवात्माएं परमेश्वर के अंश रूप होने के कारण दिव्य स्थिति को प्राप्त हैं, किंतु इस जगत में वे अपने मन तथा इंद्रियों के कारण दुख उठा रही हैं। इन दुखों से उबरने के लिए आवश्यक है कि मन तथा इंद्रियों को वश में किया जाए और भौतिक स्थितियों से विरक्त हुआ जाए। मनुष्य को चाहिए कि तप करना न छोड़े। भगवान ऋषभदेव ने साक्षात प्रदर्शित किया कि किस प्रकार यह करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में इसका विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। मात्र स्वस्त्र दुहित्रावा न विविक्तासनो भवेत् बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी तथा ब्रह्मचारी को स्त्री संगति से सावधान रहना चाहिए। यहाँ तक कि अपनी माँ बहन या लड़की के साथ एकांत में बैठना वर्जित है। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के समाज में, विशेष रूप से पश्चिमी देशों में, स्त्रियों से विलग रह पाना कठिन है। इसीलिए कभी कभी हमारी आलोचना भी की जाती है, किंतु हम प्रत्येक प्राणी को हरे कृष्ण महामंत्र जपने का समान अधिकार प्रदान कर रहे हैं और इस प्रकार उन्हें आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर बना रहे हैं। यदि हम निष्पाप भाव से हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहें तो श्रील हरिदास ठाकुर के अनुग्रह से हम स्त्रियों के आकर्षण से बच सकते हैं, किंतु यदि हम हरे कृष्ण महामंत्र के जाप में तनिक भी ढिलाई बरतेंगे तो हम किसी भी समय स्त्रियों के शिकंजे में आ सकते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सर्वशास्त्राधिपीयूषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राणा श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्या श्रीकृष्णा परिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तु ते। मदेकबन्धो मत्संगे मद्गुरौ मन्महाधना मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तु ते। असाधु साधु तदायीन् अतिनीचोचतः कर हानमुञ्च कदाचिन्मां प्रेरणारुत्कण्ठयोऽसुरा। हरे कृष्ण ऋषभदेव के विषय में अब हम अंतिम अध्याय पर हैं। छठा अध्याय जो ऋषभदेव के किस प्रकार वो इस ब्रह्मांड से अप्रकट हुए हैं इसका वर्णन करेगा और साथ ही साथ कैसे उन्होंने अपने आचरण से योगियों के लिए भक्तों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण या आदर्श प्रस्तुत किया ये भी इस अध्याय में समझाया जाएगा और साथ साथ में कलयुग के लक्षण कि कलयुग में कैसे लोग आनंद लेते हैं भगवान से दूर जाने में, आनंद लेते हैं एक ऐसे धर्म को स्थापित करने में जो वेदों पर आधारित नहीं है। ये कलयुग के लोगों का लक्षण है। और साथ ही साथ इस अध्याय के प्रारंभ में कैसे अपने मन को वश में रखना चाहिए, भक्ति में क्यों आवश्यक है संयम, इसका वर्णन इस अध्याय में किया गया है। तो पहले श्लोकों में, पहले श्लोक से लेकर करीब पांचवें श्लोक तक, पहले ही श्लोक में तो प्रश्न है परीक्षित महाराज का और फिर आगे उसका उत्तर है सुखदेव गोस्वामी के द्वारा। तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, पिछले अध्याय में सुना कि ऋषभदेव के पास योगियों के पास जो शक्तियां होती हैं वो शक्ति है, कुछ सिद्धियां हैं, लेकिन उन सिद्धियों को उन्होंने प्रकट नहीं किया। हालांकि उनके पास वो तो स्वयं भगवान के अवतार हैं, तो सारी योगी सिद्धियां तो होनी ही चाहिए, लेकिन उन्होंने कभी प्रकट नहीं किया उन योग सिद्धियों को। तो परीक्षित महाराज ने जब ये सुना तो उनके मन में प्रश्न आया कि ऐसा क्यों, ऋषभदेव ने योग शक्तियों को प्रकट क्यों नहीं किया। मान लीजिए कि सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते कि योग शक्तियां कभी कभी व्यक्ति को भक्ति मार्ग से विचलित कर सकती हैं, तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि एक भक्त तो भगवान की भक्ति में लगा है, तो फिर उसको योग सिद्धियां अगर वो प्रकट भी करता है तो कोई प्रभाव नहीं होगा, तो फिर ऋषभदेव ने क्यों नहीं किया। दूसरी ओर वे तो स्वयं भगवान हैं, तो उनको क्या प्रभाव हो सकता है योग सिद्धियों के प्राकट्य से। साधारण व्यक्ति को योग सिद्धियों के प्राकट्य से क्या प्रभाव होता है, वो आसक्त हो जाता है, अपने आप को ईश्वर मानने लगता है, क्योंकि जब भी किसी के पास कोई शक्ति आ जाती है तो स्वाभाविक है वो भगवान से दूर चला जाता है। ऐश्वर्य आ जाए, शक्ति आ जाए, बल आ जाए, तो स्वाभाविक तो भगवान से दूर जाने में मदद करते हैं। इसीलिए कुंती महारानी कहती हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्रीवी एदमानम मद अपमान, पागल कर देता है आदमी को ये जो शक्तियां हैं। और फिर सिद्धियों की बात तो कहना ही क्या, हम जिन शक्तियों को जो ऐश्वर्य जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्रीवी, इनसे तो कहीं आगे हैं सिद्धियां, क्योंकि सिद्धियां व्यक्ति को इस जगत में बड़ा विशेष बना देती हैं। जैसे धन वो कई लोगों के पास हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इस जगत में केवल कुछ ही व्यक्ति धनी हैं बाकी सारे गरीब, बहुत लोगों के पास जन्म बहुत लोगों का होता है, अच्छे परिवार में ऐश्वर्य बहुत लोगों के पास, लेकिन सिद्धियां ये बहुत कम लोगों के पास होती हैं। इसलिए सिद्धियां व्यक्ति को ये विश्वास दिलाने के लिए कि वो भगवान है बड़ा आसान तरीका है, क्योंकि जो व्यक्ति कुछ साधारण व्यक्ति नहीं कर पाता वो सिद्धि प्राप्त व्यक्ति कर लेता। जैसे अगर किसी को सिद्धि आ जाए कि वो यहीं बैठे बैठे कहीं से कुछ ला सकता है, मान लीजिए हिमाचल प्रदेश में सेब बड़े अच्छे होते हैं और हम यहीं बैठे बैठे अपना हाथ करें और वहां के एक पेड़ से सेब तोड़ कर ले आए, तो बाकी जो लोग बैठे हैं वो देखेंगे, वो तो कहेंगे भगवान भगवान भगवान, ये तो कोई नहीं कर सकता, ये तो केवल भगवान कर सकते हैं। तो वो व्यक्ति में वो भावना, वो शक्ति, इसीलिए सिद्धियों की शक्ति बहुत तेज है, बहुत प्रभावी है। और इसीलिए परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि क्यों उन्होंने शक्तियों का पालन नहीं किया, वो तो भगवान हैं, भक्त को तो एक जो भक्ति में लगा है उसको कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो उनका ये प्रश्न था और उसका बहुत सुंदर उत्तर दूसरे श्लोक से पांचवें श्लोक तक सुखदेव गोस्वामी देते हैं। सुखदेव गोस्वामी एक उदाहरण देते हैं एक शिकारी का। वो कहते हैं कि आपने जो कहा सही है कि एक भक्त को प्रभावित नहीं होना चाहिए सिद्धियों से, इसीलिए वो प्रकट करे तो क्या गलती है। जैसे मान लीजिए किसी भक्त के पास सिद्धि है, तो अगर उसको प्रकट करता है तो क्या तकलीफ है, वो तो प्रभावित नहीं होगा, वो तो भगवान की सेवा में लगा। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जिस प्रकार एक शिकारी जब किसी पशु को पकड़ लेता है तो उस पशु के ऊपर अपना विश्वास नहीं रखता, जैसे पशु को पकड़ लिया तो अब उसको आराम से खुला छोड़ दिया कि ठीक है अब तो मैंने पकड़ लिया, अब ये मेरा पशु है कहीं नहीं जाएगा। नहीं, एक शिकारी जब पशु को पकड़ता है तो उसको अच्छी तरह बांध कर रखता है, छोड़ता नहीं है उसको, वो कोई विश्वास नहीं दिखलाता उसके ऊपर, भले ही वो पशु बड़े प्रेम से उसकी ओर देखे लेकिन वो विश्वास नहीं दिखलाता। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं क्यों, क्योंकि जैसे ही जरा से छोड़ेंगे भाग जाएगा। इसी तरह योगी के लिए मन उस पशु के समान है जैसे एक शिकारी ने उसको बांध रखा है। तो जैसे शिकारी पशु के ऊपर अपना विश्वास नहीं दिखलाता, ऐसे ही एक योगी, एक भक्ति योगी मन के ऊपर अपना विश्वास नहीं दिखलाता। भले ही मन वश में आ गया है उसके, भले ही उसने संयम दिखलाया है, लेकिन फिर भी वो विश्वास नहीं करता मन पे। क्यों? कभी भी मन भाग सकता है, जैसे कभी भी पशु भाग सकता है, और पशु भाग ही जाता है, आप कितना ही विश्वास दिखलाइए। हम लोगों ने एक गाय को यहाँ पर रखा था, बहुत सेवा की उसकी, 2-3 महीने रही भाग गई, फिर से पकड़ के लाए फिर भाग गई, हम लोगों ने विश्वास नहीं दिखाया, उसको बंद करके रखा, जब तक बंद करके रखा रही, जैसे ही खोला भाग गई। फिर हमने भी सोचा ठीक है भागने दो, बार बार भाग रही है, कहाँ पकड़ कर लेकर आए। तो पशु है, तो हमारा मन भी ऐसा ही है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। और एक योगी को विश्वास नहीं करना चाहिए, जहाँ थोड़ी सी ढिलाई हुई, जहाँ उसने सोच लिया कि अब तो मैं मन पर पूर्ण नियंत्रण कर चुका हूँ, अब कोई चिंता नहीं है, मेरा मन माया में कभी नहीं लगेगा, भोगों में कभी नहीं लगेगा, इसीलिए ध्यान नहीं करे, तो फिर उसकी मृत्यु हो सकती है, मन उसको मार सकता है आध्यात्मिक रूप से। और इसीलिए ऋषभदेव ने एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए हम सबके लिए सिद्धियों को प्रकट नहीं किया। एक भक्त के पास सिद्धियां हो सकती हैं लेकिन उसको प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे वो भक्ति के पथ से विमुख हो सकता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि हमारे पास कोई ऐश्वर्य हो, धन हो, जो भी हो, भगवान की सेवा में लगाना है लेकिन उस पर विश्वास नहीं करना, उससे प्रभावित नहीं होना, अहंकारी नहीं हो जाना कि देखो मेरे पास इतनी सिद्धियां हैं, मैं ये कर सकता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भक्त कुछ कह देते हैं और वो पूरा हो जाता है, तो लोग कहते हैं बस स्वामी जी आप जो कहें वो पूरा हो। वो स्वामी जी की कोई वैल्यू नहीं है, वो तो पीछे से आ रही है वैल्यू, भगवान वो कर देते हैं कभी कभी, थोड़ा भक्त को प्रेरणा देने के लिए कि ठीक है उसको भी लगे और तीव्रता से भक्ति करूं। तो कभी कभी भक्त कुछ कहते हैं वो पूरा कर देते हैं भगवान। तो भक्त को ये नहीं मानना है कि मेरे कारण हो गया, अब मैं जो भी बोलूंगा वो पूरा होगा, नहीं, ये शक्ति पीछे से आती है। तो इसी तरह ऋषभदेव कह रहे हैं कि जो भी, ऋषभदेव समझा रहे हैं कि जो भी हमारे पास ऐश्वर्य हो, शक्ति हो, उसको भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए। और प्रभुपाद कहते हैं कि व्यक्ति को भक्ति में 3 चीजों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। अगर वो मन को वश में रखना चाहता है, संयमी रहना चाहता है, तो 3 चीजों को कभी त्याग नहीं करे। पहली चीज हरे कृष्ण महामंत्र का जप। प्रभुपाद कहते हैं कि सन्यासी को भी त्यागना नहीं चाहिए। कुछ स्थानों पर ऐसा है कि ऐसा माना जाता है सन्यासी हो गए तो कोई नियम नहीं उनके लिए, वो सब त्याग सकते हैं। प्रभुपाद कहते हैं नहीं, एक सन्यासी को भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप, संकीर्तन, यज्ञ कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो पहली चीज वो कहते हैं कि इसको कभी नहीं त्यागना चाहिए, हमेशा इसमें लगे रहना चाहिए व्यक्ति को। तो अगर हम मन को वश में रखना चाहते हैं, भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहते हैं, तो हरे कृष्ण महामंत्र को कभी नहीं त्यागें, किसी भी अवस्था में नहीं। एक स्थान पर तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं 24 घंटे अगर हो सके कीर्तनीय सदा हरि चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। इसीलिए हमें 24 घंटे या तो भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए या भागवत पढ़नी चाहिए, बस। तो ये कीर्तनीय सदा हरि है। दूसरी चीज प्रभुपाद कहते हैं व्यक्ति को कभी नहीं त्यागनी चाहिए, और वो है दान। दान अर्थात जैसी हमारी क्षमता है वैसा दान हमें करना चाहिए, उसको कभी त्यागना नहीं चाहिए। जिनके पास धन है वो धन का दान करें, जिनके पास विद्या है वो विद्या का दान करें, जिनके पास बुद्धि है वो बुद्धि का दान करें, जिनके पास शारीरिक बल है वो श्रम दान करें। हर अवस्था में व्यक्ति दान कर सकता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल धनवान व्यक्ति दान कर सकता है। ज्यादातर जब भारत में दान शब्द इस्तेमाल किया जाता है तो वो केवल धन के लिए होता है। जब कहा जाए दान, हाँ धन देने, तो ऐसा माना जाता है कि दान तो केवल धनी लोग कर सकते। जैसे कभी कभी लोगों को कहा जाए वो बहुत बड़े दानी हैं, दानी है मतलब वो बहुत धन देते हैं, तो वो एक प्रकार का दान है। तो ऐसा बाकियों को नहीं मानना चाहिए कि हमारे पास कुछ नहीं, हम दान नहीं कर सकते। हर एक व्यक्ति को दान करना है। हाँ, जिनके पास धन है उनको प्रचुर मात्रा में धन दान करना चाहिए, जिनके पास विद्या है उनको प्रचुर मात्रा में विद्या दान करनी चाहिए। जब व्यक्ति दान करने बैठे विद्या का, तो उसको सोचना चाहिए जो कुछ मेरे पास है मैं सब दे दूं। इस भाव में विद्या का दान, इस भाव में धन का दान करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कल के लिए बचा कर रखो, नहीं, सब दे देना चाहिए। वैसे विद्या ये तो देने से बढ़ती है, हम जितना विद्या का दान करते हैं उतना ये बढ़ता है। तो व्यक्ति को जीवन में दान कभी नहीं त्यागना चाहिए। धन है, धन का त्याग दान करें, विद्या है, विद्या का दान करें, और ये विद्या का दान तो सर्वश्रेष्ठ दान है। या फिर हमारे पास कुछ शारीरिक बल है तो श्रम दान करें, भगवान के मंदिर में सेवा करें हाथों से। भले हमारे पास कोई बुद्धि नहीं है, हम ज्ञान बांट नहीं सकते, धन नहीं है, कोई बात नहीं, भगवान के लिए हर एक, भगवान की सेवा में हर एक व्यक्ति के लिए स्थान है। धनवान व्यक्ति के लिए स्थान है, बलवान व्यक्ति के लिए स्थान है, विद्यावान व्यक्ति के लिए स्थान है। इसीलिए हमें दान करना चाहिए, दान से कभी नहीं बचना चाहिए। तो जो लोग प्रचार कर सकें उन्हें प्रचार करना चाहिए, जो लोग धन दान दे सकें उन्हें धन दान देना चाहिए, जो लोग शरीर से सेवा कर सकें श्रम दान देना चाहिए। तो कभी भी हमें उससे बचना नहीं चाहिए। और तीसरी चीज प्रभुपाद कहते हैं तपस्या, इसको कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र को कभी नहीं त्यागे, अर्थात हम सबके लिए प्रभुपाद का आदेश है। जब हम प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ें तो हमें केवल इनको एक तात्पर्य, एक भागवत नहीं लेना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि प्रभुपाद हमारे सामने बैठे हैं और हमें ये, हमसे ये बोल रहे हैं। और जब इस प्रकार हम इनको लेंगे तब जीवन सफल होगा। तो हमें कैसे लेना है, कि किस प्रकार हमें लेना है, कि ये प्रभुपाद का आदेश है। तीन चीजों को कभी जीवन में नहीं त्यागें, दान को, हरे कृष्ण महामंत्र को और तपस्या। तो तपस्या को भी जीवन में कभी नहीं त्यागना चाहिए। और तपस्या क्या है, मन को वश में रखना, ये बहुत बड़ी तपस्या है। बाहरी तपस्या, शरीर की तपस्या, ये भी तपस्या है और व्यक्ति को करनी चाहिए, लेकिन उससे बड़ी तपस्या है मन की तपस्या। तो व्यक्ति को मन के स्तर की तपस्या, भगवद गीता में भगवान इन तपस्याओं का वर्णन करते हैं, तो मन की तपस्या करनी चाहिए, अहंकार को त्यागने की तपस्या करनी चाहिए, इच्छाओं को वश में रखने की तपस्या करनी चाहिए, इंद्रियों को वश में रखने की तपस्या करनी चाहिए। व्यक्ति को अपने मन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये तपस्या बहुत आवश्यक है भक्ति में। शरीर की तपस्या भी आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ मन की तपस्या आवश्यक है। इसीलिए मन को संयम में रखना बहुत अनिवार्य है भक्ति में, क्योंकि मन उस पशु की तरह है जो स्वयं तो भागेगा ही और हमें भी ले डूबेगा। अगर किसी शिकारी का पशु भाग भी जाए तो उसको थोड़ा बहुत नुकसान है बस, लेकिन अगर हमारा मन भाग जाए तो केवल हमें उस नुकसान की तरह नहीं देखना चाहिए कि ठीक है हम दूसरा पशु पकड़ लेंगे, नहीं, मन भाग गया तो कई जन्मों तक हम दूर रहेंगे, फिर मन को वश में रहने के लिए तकलीफ होगी, इसीलिए मन को संयम करना चाहिए। तो ये बताते हैं आगे मन की तुलना। तो अब आगे जैसे इस श्लोक में भी हमने मन का विषय पढ़ा, ये तीसरा श्लोक है, तो दूसरे श्लोक में उन्होंने तुलना की एक पशु से, ये तीसरे श्लोक में हम लोग देखते हैं कि कैसे यहाँ पर वो कह रहे हैं इस श्लोक में कि कभी भी विद्वान व्यक्ति का मन है कि मन अत्यंत चंचल है तो इससे मित्रता नहीं करनी चाहिए, किसी भी क्षण धोखा दे सकता, मन से मित्रता नहीं कीजिए। मित्रता नहीं कीजिए मतलब विश्वास मत कीजिए उस पर, मित्र मतलब विश्वास, मित्रता का आधार विश्वास होता है। अगर हम कहें कि ये मेरा मित्र है लेकिन मैं इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता, वो शत्रु है, फिर मित्र कहाँ है, मित्र मतलब विश्वास। तो मन को ऐसा मित्र नहीं बनाइए कि उसके ऊपर विश्वास हो। क्यों, उदाहरण दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, शिव जी का बात याद है ना, परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, शिव जी ने मोहिनी मूर्ति अवतार बहुत प्रार्थना की भगवान से, मैं देखना चाहता हूँ, भगवान ने कहा नहीं, अपनी भक्ति में लगे हो ठीक है, जो कर रहे हो ठीक है। शिव जी ने कहा नहीं, जब आपने मोहिनी अवतार लिया मैं चला गया था, विष पीकर थोड़ा गले में ले लिया था तो थोड़ा वहां से चला गया, मैं देखा नहीं आपका अवतार, तो देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा रहने दो, नहीं तो ठीक है, भगवान की इच्छा, भक्त की इच्छा पूरी करते हैं। भगवान ने मोहिनी अवतार प्रकट किया, वही रूप, वही सुंदर रूप, और शिव जी अपने सारे गणों के सामने वहां पर उस समय कैलाश पे सारे उनके गण उपस्थित थे, सब देख रहे थे, और शिव जी निर्लज्ज व्यक्ति की तरह भागे मोहिनी मूर्ति के पीछे। आप सोचिए, व्यक्ति को अगर हृदय में काम वासना हो भी तो अपने गणों के सामने वो कभी प्रकट नहीं करता, अपने गणों के सामने वो बड़ा वश में रहेगा, अकेले में कुछ भी करेगा लेकिन गणों, यहां शिवजी इतने निर्लज्ज हो गए, इतने निर्लज्ज कि भागे मोहिनी मूर्ति के पीछे और सारे गण देख रहे हैं क्या हो गया शिवजी को, धीर व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं कर पाया। तो ये एक उदाहरण देते हैं। और दूसरा सौभरी मुनि का, सौभरी मुनि इन्होंने सोचा कि मन बड़ा चंचल है, कहीं अगर बाहर रहकर तपस्या करूंगा कुछ ना कुछ दिख जाएगा तो फिर नहीं कर पाऊंगा, इसलिए पानी के अंदर चले गए कि वहां तो कुछ नहीं दिखेगा, कोई स्मरण नहीं आएगा। तो बहुत समय तक, लंबे समय तक पानी के अंदर रहकर उन्होंने तपस्या की, लेकिन वहां भी क्या हुआ, एक मछली, दो मछलियां आपस में संग कर रही थी, प्रेम का आदान प्रदान कर रही थी। सौभरी मुनि ने वो देख लिया, मछली बताई, स्त्री भी नहीं। देखिए मन क्यों उदाहरण दिया गया, ये दिया है कि हम कहते हैं कि स्त्री संग से होगा, सौभरी मुनि ने कौन सी स्त्री देखी थी, कोई जल के अंदर कहां स्त्री थी, कोई नहीं, पानी में थे, केवल इसीलिए गए थे कि मैं कोई स्त्री को देखना नहीं चाहता, तपस्या करूंगा, मछलियों को देख लिया। देखिए मन, इसीलिए मन से कभी मित्रता नहीं करना, ये कहा सुखदेव गोस्वामी। तो सौभरी मुनि ने मछलियों को देख लिया, तुरंत हृदय में वासना जागृत हो गई, बाहर आ गए, 50 स्त्रियों से विवाह कर लिया, एक से भी नहीं और फिर एक दिन, बहुत समय बीत गया, एक दिन नदी के किनारे बैठे थे और तब उनको ध्यान आया नदी देख कर कि अरे मैं कहां था और कहां आ गया, भूल गए इतने समय में तपस्या करना है, ये करना है, वो सब भूल गए। जब नदी देखी, पानी देखा, तब याद आया कि अरे मैं कहां था, पानी के अंदर था और अब मैं कहां हूं, स्त्रियों के साथ भोग कर रहा हूं। तब उनके माता ठनका कि कैसे यहां पहुंच गया मैं, क्या हुआ। तो ये है मन पर विश्वास, इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मन पर कभी विश्वास नहीं करना, मित्रता तो बिल्कुल नहीं करना मन से, पकड़ के रखो उसको। ये कारण बता रहे हैं कि क्यों ऋषभदेव ने योगी, जो उनके पास सिद्धियां थी, योग सिद्धियां, क्यों उनको प्रकट नहीं किया, क्योंकि उनको विश्वास, वो दिखाना चाहते थे आदर, उनको तो कोई तकलीफ नहीं, वो भगवान है, लेकिन वो एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे कि व्यक्ति के पास शक्तियां हो भी तो कभी प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए, कि शक्ति प्रदर्शित करके भी मेरा मन भगवान में लगा रहेगा। तो इस उदाहरण को देने के लिए सुखदेव गोस्वामी ये सब बता रहे हैं कि देखो शिव जी सौभरी मुनि क्या हुआ उनका, तो इसलिए कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो पहले उन्होंने दूसरे श्लोक में कहा पशु से तुलना की मन की, फिर वो तुलना अब कर रहे हैं कि मित्रता नहीं करें उदाहरण देकर, और फिर आगे के श्लोक में पांचवें श्लोक में चौथे श्लोक में वो तुलना करते हैं मन की एक ऐसी स्त्री से एक ऐसी पत्नी से जो अपने पति के प्रति निष्ठावान नहीं है, पतिव्रता नहीं है, जो स्त्री ऐसी स्त्री का वर्णन करते कि मन उस तरह है। तो उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई विवाहिता स्त्री हो लेकिन उसका मन या उसका प्रेम किसी और से हो जाए अपने पति को छोड़कर, तो कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो इतना ज्यादा उस व्यक्ति में आसक्त हो जाती है कि अब दोनों मिलकर अब उसके पति का वध कर देते हैं। ऐसा हम लोग कई बार पेपर में भी पढ़ते हैं ना, देखिए भागवत में 5000 साल पहले लिखा गया कि ऐसा होता है। ये तो हम लोग रोज पेपर में पढ़ते हैं आजकल कि कभी किसी स्त्री का किसी और व्यक्ति के साथ प्रेम हो गया, फिर दोनों ने मिलकर मार डाला उसके पति को। तो भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने पहले ही कह दिया कि ये होने वाला या होता है। तो उदाहरण देते हैं कि ऐसी स्त्री जो पतिव्रता नहीं है और अगर उसका किसी के साथ प्रेम हो जाता है, वो किसी और से आसक्त हो जाती है, तो इस हद तक जा सकती है कि अपने पति का ही वध कर देती है। तो ऐसा हमारा मन है। तो ये तीसरी तुलना मन से कर रहे मन की, कि मन पे विश्वास नहीं रखना। तो एक जो पति होता है अगर उसको पता है कि उसकी पत्नी पतिव्रता नहीं है तो उसको कभी अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे पत्नी कहे कि ठीक है आज आप आराम से सो जाओ मैं इंतजार करती हूँ और फिर मारेगी, तो कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जैसे एक पति को ऐसी पत्नी पर कभी विश्वास नहीं होना चाहिए, ऐसे ही एक योगी को अपने मन पर कभी विश्वास नहीं होना चाहिए। तो अलग अलग उदाहरण देकर ये बता रहे हैं कि मन पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना, और यही प्रकट करने के लिए ऋषभ देव ने अपनी सिद्धियों को प्रकट नहीं किया, ये दबाने के लिए कि विश्व, क्योंकि व्यक्ति अगर सिद्धियां प्रकट करने लगे, मान लीजिए एक भक्त के अंदर सिद्धि हो जाए कि जो वो बोले वो सत्य हो जाए, तो लाइन लग जाएगी है ना। ऐसा थोड़ी होगा कि वो भक्त फिर आराम से रहेगा, नम्र रहेगा, अहंकार से रहित रहेगा, नहीं, रोज उसके लिए लाइन लगी होगी और लोग आकर स्वामी जी ये करिए और वो हाँ ठीक है तुम्हारा ये होगा तुम्हारा वो होगा, तो कहाँ भक्ति रह जाएगी उसके अंदर। उसके अंदर तो ये अहंकार आ जाएगा कि देखो मेरे बोलने से इतनी लंबी लाइन लगी हुई, हजारों लोग मुझे मिलने आते हैं, टाइम लेना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, दूर दूर से लोग आते हैं। अच्छा है ये सब ना हो एक भक्त के लिए, बहुत बड़ा खतरा है। तो आप में से भी कभी कोई कामना मत कीजिएगा कि भगवान मुझे ये सिद्धि दे दे वो सिद्धि दे दे। थोड़ी बहुत सिद्धियों की कामना आप कर सकते हैं, जैसे ब्रह्मचारी कभी सिद्धि की कामना करते कि एक सिद्धि आ जाए कि कपड़े अपने आप धुल जाए, क्योंकि कपड़े धोने में बड़े कष्ट होता है। ये सिद्धियां की कामना कर लेना कभी कभी, हाँ कपड़े अपने आप उतार के रखें, अगले दिन अपने आप धुले धुलाए प्रेस किए हुए मिले। लेकिन वो सिद्धि की कामना भी ब्रह्मचारी को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सिद्धि के लिए उसको विवाह करना पड़ेगा जाके। तो इसीलिए कोई कामना नहीं कोई सिद्धि। तो हमें अगर ऐसी कोई सिद्धियां भक्त को आ जाए तो स्वाभाविक है वो भक्ति का मार्ग त्याग देगा। तो उसको इस जगत में थोड़ी बहुत प्रसिद्धि मिल जाएगी, लोग उसको भगवान मानने लगेंगे, या हो सकता है कि बहुत कुछ उसको धन ऐश्वर्य मिल जाए, लेकिन भक्ति नहीं मिलेगी, मनुष्य जीवन के उद्देश्य को खो बैठेगा। तो क्या लाभ है ऐसे व्यक्ति का जिसको बहुत बड़ी सिद्धि है, वो लोगों के लिए ये कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन अपने जीवन का क्या लाभ, भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा, अहंकारी हो जाएगा। तो इसीलिए तुलना की गई कि बहुत सावधान, विश्वास नहीं करें मन पे। तो ये अगले श्लोक में उसका वर्णन वो करते हैं सुखदेव गोस्वामी कि इसको बहुत संभालना चाहिए। और फिर आगे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न वो बात कहते हैं कि ये जो मन है अनियंत्रित मन, यही काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य का कारण है। तो ये जो षड रिपु हैं हमारे हृदय में, इनका कारण है अनियंत्रित मन। तो इसीलिए मन पर विश्वास नहीं करना, उसको नियंत्रण में रखना। तो क्या क्या होगा? अगर विश्वास किया तो पशु की तरह पहला उदाहरण दिया, दूसरा मित्रता नहीं करना शिव जी का उदाहरण दिया, तीसरा एक व्याभिचारिणी स्त्री का उदाहरण दिया कि किस तरह वो मार डालती अपने पति को, मन मार डालेगा आपको भक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से। और फिर वो कह रहे हैं कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य को त्यागना आवश्यक है, लेकिन अनियंत्रित मन इसका कारण है। तो जब हमारे मन पर नियंत्रण नहीं होता, हृदय में काम वासना बढ़ती है, हृदय में लोभ बढ़ता है, मद मात्सर्य बढ़ता है, द्वेष बढ़ता है, ये सब अनियंत्रित मन से। अगर मन नियंत्रण में है व्यक्ति के, तो फिर कैसा उसको लोभ? क्या वो लोभ करेगा कि मुझे ये मिल जाए, धन मिल जाए, सत्ता मिल जाए? नहीं, उसका मन नियंत्रण में है और वो भी भक्ति में लगा है। मन को नियंत्रण में रखने का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रभावकारी उपाय है भक्ति, उसको भगवान के चरणों में लगाना। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो, भगवान के चरणों में लगाना, ये सबसे प्रभावी मार्ग है। तो जो भक्ति में लगा है उसको क्या लोभ है? क्या चाहेगा वो धन की कामना? जब उसको पता है कि ये धन सब समाप्त तो होने वाला है, असली धन है हरि नाम, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो इसीलिए ये उदाहरण दे रहे हैं आगे के श्लोक में कि हमें काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से अगर अलग रहना है तो हमें मन को नियंत्रण में रखना चाहिए। तो हर भक्त को, चाहे वो गृहस्थ हो, जैसे श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, चाहे गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी, हरेक को मन को नियंत्रण में रखना। तो ऐसे फिर ये बात कह के अब फिर छठे श्लोक से आठवें श्लोक तक ऋषभ देव के अप्रकट होने की लीला का वर्णन वो करते हैं। तो वो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि ऋषभ देव पूर्ण रूप से विरक्त तो हो चुके थे। उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया भक्तों के लिए कि कैसे हर भक्त को, हर योगी को अपना स्थूल शरीर त्यागने से पहले सूक्ष्म शरीर को त्याग देना चाहिए। हम सबके दो शरीर हैं, सूक्ष्म और स्थूल। स्थूल शरीर बना है भूमि राप नल वायु खम, ये पांच चीजों से बना है, पृथ्वी आकाश जल वायु और अग्नि। और सूक्ष्म शरीर बना है मन बुद्धि अहंकार। तो ऋषभ देव विरक्त हो गए, अर्थात उन्होंने पहले अपने सूक्ष्म शरीर को समाप्त कर दिया, मन को वश में कर लिया, बुद्धि को भगवान में लगा लिया, अहंकार त्याग दिया। जैसे हम कल भी वर्णन कर रहे थे कि कैसे बच्चे को इनको पत्थर मारते थे, लोग कुछ कुछ कहते थे, उनको कोई चिंता नहीं। तो अपने सूक्ष्म शरीर को उन्होंने त्याग दिया। हम सबके लिए मान अपमान बहुत महत्वपूर्ण है। ऋषभ देव दिखलाते हैं ये सूक्ष्म शरीर को बनाए रखना है। जब तक हम इसके पीछे भाग रहे हैं, मतलब हमारा सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। स्थूल शरीर को त्यागने से पहले व्यक्ति को सूक्ष्म शरीर त्याग देना चाहिए, ऋषभ देव सिखलाते हैं। जब तक इससे परे नहीं आएंगे, क्यों त्यागना चाहिए? क्योंकि मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर हमें दूसरे शरीर में ले जाता है। तो अगर सूक्ष्म शरीर बना रहा मृत्यु के बाद, स्थूल शरीर जाने के बाद, तो फिर और एक शरीर लेना पड़ेगा। इसीलिए पहले सूक्ष्म शरीर को त्याग दीजिए, मन बुद्धि अहंकार इसको भगवान की सेवा में लगाइए। मन को भगवान की सेवा में, बुद्धि को भगवान की सेवा में, और अहंकार को त्याग दीजिए, मिथ्या अहंकार को, सच्चे अहंकार को स्वीकार कीजिए। और सच्चा अहंकार क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, ये सच्चा अहंकार है। जीव के दो अहंकार होते हैं, एक मिथ्या और एक सच्चा अहंकार। मिथ्या अहंकार है हम ये शरीर हैं, इसलिए शारीरिक स्तर पर कार्य करना ये मिथ्या अहंकार के कारण है। और सच्चा अहंकार क्या है व्यक्ति का? मैं कृष्ण का दास हूं, और उस स्तर पर कार्य करना ये मुक्ति का पथ है, मोक्ष द्वारम अपावृतम। तो ऐसे ऐसे स्तर पर कार्य करने से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं, भगवान की सेवा में हम अपने आप को पुनः स्थित करते हैं। तो ऋषभ देव ने ये उदाहरण दिया। फिर ऐसे ही वो सारे पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे, ऐसे ही रहते थे, बाल खुले हुए हैं, वस्त्र हैं नहीं हैं, वस्त्र नहीं थे, और कहीं भी जा रहे हैं, कोई उनको शरीर की चिंता नहीं। तो ऐसे भ्रमण करते करते दक्षिण भारत में आए, कर्नाटकम, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। तो ऋषभ देव यहाँ पर आए, कर्नाटक नाम के स्थान, कर्नाटकम मतलब कर्नाटक में आए होंगे, वैसे तात्पर्य अनुवाद में कर्नाट नाम के स्थान लिखा कि दक्षिण भारत में कर्नाट नाम के, लेकिन जो संस्कृत का शब्द है वो है कर्नाटकम, तो कर्नाटकम पता नहीं यहीं आए होंगे कर्नाटक में। तो कर्नाट नाम के स्थान में आए और यहाँ पर भ्रमण करने लगे, और फिर यहाँ पर अलग अलग प्रांत थे तो उन प्रांतों में उन्होंने भ्रमण किया, और फिर एक स्थान पर गए जहाँ पर कुटकचल नाम का स्थान था, जहाँ बहुत बड़ा वन था। तो ऋषभ देव ने उस वन में प्रवेश कर लिया, कुटकचल, और कुटकचल वन में प्रवेश किया, और अचानक फिर वहाँ पर अग्नि लग गई पूरे वन में। तो वर्णन करते सुखदेव गोस्वामी की जो बांबू होते हैं तो उनके घर्षण से ये अग्नि प्रकट हुई, और फिर पूरे दावाग्नि जिसे कहते हैं, तो दावाग्नि स्वयं लगती है, कोई लगाता नहीं है, इसलिए संसार की तुलना दावाग्नि से की गई है, संसार दावा नल लीढ़ लोका। तो ऋषभ देव फिर उसी में समाप्त हो गए, ऐसा वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि ऋषभ देव का शरीर तो आध्यात्मिक है, वो जला नहीं, एक लीला करने के लिए उन्होंने ये दर्शाया कि कैसे एक योगी को अपने शरीर को त्याग देना चाहिए। तो ऐसे वे उनका वहां हुआ, और उसके बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रांत का कोंक, कोंक शब्द इस्तेमाल किया गया, अभी हमें लगता है शायद कोंक कोंकण के लिए होगा, कोंक प्रांत का जो एक राजा था, मतलब कर्नाटक या कर्नाट नाम के स्थान में दो तीन प्रांत बताए गए, उनमें से एक कोंक प्रांत, वेंक प्रांत बताया गया, अब इस समय पता नहीं वो किस स्थान के लिए वर्णन है। तो उसके जो राजा थे जिनका नाम था अरहत, उन्होंने ऋषभ देव के बारे में बहुत सुना, उनके वैराग्य के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में, बड़े प्रभावित हुए, लेकिन माया से प्रभावित होकर उन्होंने उनकी नकल करना प्रारंभ किया अरहत राजा ने, और उन्होंने नकल करके अपने वस्त्रों को त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया। जैसे वैसे ऋषभ देव ने अपने वस्त्रों को नहीं त्यागा था, लेकिन अपनी बाहरी चेतना खो बैठे थे, इसलिए उन्हें कोई ज्ञान नहीं था कि पहने हैं नहीं पहने हैं, लेकिन राजा अरहत ने उनकी नकल की। और सुखदेव गोस्वामी, हम ये दो श्लोक के अनुवाद पढ़ना चाहते हैं ताकि आप लोग जान लें कि क्या है सही। ये नवे श्लोक का अनुवाद और दसवें श्लोक का अनुवाद पढ़ेंगे। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को आगे बताया कि हे राजन, कोंक, वेंक तथा कुटक के राजा ने, जिसका नाम अरहत था, ऋषभ देव के कार्यकलापों के विषय में सुना, और उसने ऋषभ देव के नियमों का अनुकरण करते हुए एक नवीन धर्म पद्धति चला दी। पापमय कर्मों के इस युग कलयुग का लाभ उठाकर मोहवश राजा अरहत ने बाधा रहित वैदिक नियमों को छोड़ दिया और वेद विरुद्ध एक नवीन धर्म पद्धति गढ़ ली। यही जैन धर्म का शुभारंभ था। अन्य अनेक तथाकथित, वैसे शुभारंभ नहीं लिखना चाहिए हिंदी में, शुभारंभ लिखा है, शुभारंभ शुभ क्या था उसमें, अन्य अनेक तथाकथित धर्मों ने इस नास्तिकवाद को ग्रहण किया। दसवें श्लोक का, अधम तथा परमेश्वर की माया से मोहित व्यक्ति मूल वर्णाश्रम धर्म तथा उसके नियमों का परित्याग कर देंगे। अब ये कलयुग का लक्षण बता रहे हैं कि क्या होगा। वे नित्य तीन बार स्नान करना और ईश्वर की आराधना करना छोड़ देंगे। सही है ना, किसी को आज बोलिए तीन बार नहाना, बोले प्रभु एक बार सुबह नहा लेते हैं और क्या, इतना तीन तीन बार आप लोग तो क्या करते हो, वजन कम हो जाएगा। तो तीन बार स्नान करना और ईश्वर की आराधना करना छोड़ देंगे। तो देखिए कलयुग का लक्षण है, पहला लक्षण वर्णाश्रम धर्म तथा उसके नियमों का परित्याग कर दिया। आज कौन पालन करता है वर्णाश्रम धर्म का? ब्राह्मण है वो शूद्र की तरह कार्य करता है, शूद्र है वो नेता बना हुआ है, और जो क्षत्रिय हैं वो पता नहीं कहाँ छुप कर बैठे हैं, उनको रक्षण की आवश्यकता है। तो कहाँ कौन से वर्णाश्रम धर्म का पालन हो रहा? तो कलयुग का लक्षण है वर्णाश्रम धर्म का कोई पालन नहीं करेगा। दूसरा लक्षण नित्य तीन बार स्नान और ईश्वर की आराधना त्याग देंगे। तो तीन बार स्नान तो हमें एक बार एक लड़का आया था, ब्रह्मचारी बन रहा था, तो उसकी माता आई थी, तो मंदिर में रह रहे थे तो बातचीत कर रहे थे। तो वो थोड़ा बनना चाहता था, घर पे जाता था, तो शौच जाने के बाद नियम है कि स्नान करना चाहिए, उनके घर में ये नियम नहीं था। तो उन्होंने हमसे पूछा कि ये घर पर आकर बड़ा विचित्र तरह से आचरण करता है। कि हमने कहा क्या हो गया, ऐसा क्या करता है? तो उन्होंने कहा जब भी शौच के लिए जाता है स्नान करता है। हमने कहा इसमें मतलब हमें लगा कि वो शायद कुछ और बोलना चाहते हैं, लेकिन ये बोल रहे, क्योंकि कोई हमसे आके ये नहीं पूछता कि अरे शौच में जाने के बाद स्नान करना है, तो स्वाभाविक है स्नान करना है। तो उन्होंने कहा कि शौच में जाता है तो स्नान करता है, ये बड़ा विचित्र उसका आचरण है। तो हमने उनसे कहा इसमें विचित्र क्या है, अच्छा है ना, ये तो करना चाहिए, अशुद्ध हो गया शुद्ध कैसे होगा, तो स्नान करने में क्या है उसमें? तो नहीं, ये तो आवश्यक नहीं है, हर बार थोड़ी करना चाहिए। मतलब इतना हमें सुनकर ऐसा लगा कि ये क्या। एक और बार हम कहीं गए थे किसी के साथ में, तो उनके घर गए, बहुत बड़े व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा कि एक 5 मिनट रुकी, बस 10 मिनट में आता हूँ। तो वो चले गए बाथरूम में, वैसे जैसे जो कपड़े पहने थे वही कपड़े पहने चले गए। अब अंदर 10 मिनट रहे तो स्वाभाविक है क्या किया होगा, तो हमने ज़्यादा उस पर विचार नहीं किया। लेकिन ऐसे ही बाहर आ गए, बस वही कपड़े पहने हुए थे, कोई नहाना नहीं स्नान नहीं, और हमें कह रहे हैं गाड़ी में चली, अब हम लोग साथ में चले गए। अब हमें उनके साथ में बैठने के लिए हमें लग रहा कैसे जाए ये व्यक्ति के साथ, ये अभी अभी शौच करके आया और स्नान वान तो भूल जाओ, वैसे वही कपड़ों में गया, वही कपड़े पहनकर आ गया। तो ऐसे लोगों का ये मतलब स्वाभाविक है, भक्तों को बड़ा अजीब लगता होगा कि ऐसे थोड़ी होता है, लेकिन आप जाइए बाहर सब ऐसे ही है, कोई स्नान नहीं करता, इवन शौच में जाने के बाद स्नान, तीन बार स्नान, तो ये तो तीन बार स्नान करना चाहिए और ईश्वर की आराधना को त्याग देंगे। और स्वाभाविक है सबने त्याग दिया, कौन करता है भगवान की आराधना? छोटे शहरों में गांव में आज भी लोग भगवान को मानते हैं, लेकिन आप बड़े बड़े शहरों में जाइए, समय नहीं है, मंदिर जाने का समय नहीं है, घर में भगवान को रखने का समय नहीं है, भोग लगाने का समय नहीं है, इसलिए त्याग दिया, कोई ईश्वर की आराधना नहीं करते। वैसे वो लोग ईश्वर की आराधना भय से त्यागते हैं, क्यों, उन्हें इंद्रिय तृप्ति करनी है, और अगर ईश्वर की आराधना करेंगे तो नियम आ जाएंगे, ये नहीं करना वो नहीं करना, तो इसलिए त्याग दो, आराम से मजा करो और फिर मृत्यु के समय यमराज का दर्शन करो। तो तीन बार स्नान और ईश्वर की आराधना करना छोड़ देंगे। वे शौच तथा परमेश्वर को त्याग कर अटपटे नियमों को ग्रहण करेंगे, शुद्धता को त्याग देंगे और परमेश्वर को भगवान को त्याग कर अपने ही नियम, अटपटे नियम, और क्या अटपटे नियम है उनका भी वर्णन करने, नियमित स्नान न करने अथवा अपना मुख न धोने से वे सदा गंदे रहेंगे। ऐसे लोग हैं, एक बार हमें किसी ने कहा प्रभु जी आप जानते हो उस धर्म के लोग कितने तपस्वी हैं? हमने कहा हाँ हमने सुना है, बोले वो कपड़े तक नहीं धोते हैं अपने। हमने कहा उसमें क्या तपस्या, कपड़े धोना तपस्या है, कपड़े ना धोना कौन सी तपस्या है? उन्होंने कहा हमारे आश्रम में आके देखो, कपड़े धोना तपस्या, अगर ना धोना हम लोग रूल बना दें कि हाँ ठीक है किसी को कहो तो लोग तो खुश हो जाएंगे। तो वो कहने लगे, तो यहाँ पर वही वर्णन है कि शौच नियमित स्नान न करके अपने मुख न धोने और सदा गंदे रहेंगे। ये लोग मुख नहीं धोते हैं, हम कीड़ों को मार देंगे, ये होगा वो होगा, और स्नान नहीं करेंगे, सदा गंदे रहेंगे और अपने केश नुचवाएंगे। तो आप जानते हैं कि इस धर्म में शेविंग नहीं करते हैं वो लोग, वो केश ऐसे खींचते हैं, तो केश नुचवाएंगे, ये सब शास्त्र के विरुद्ध है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि नियमित स्नान न करने, अपना मुख न धोने से सदा गंदे रहेंगे और अपने केश नचवाएंगे। तो लोग आजकल ऐसे हैं, स्नान कोई नहीं करता, और जिस देश में सबसे ज्यादा गंदे लोग हैं वहां पर सबसे ज्यादा परफ्यूम बिकता है ना। परफ्यूम जानते हैं ना आप, वो क्या बोलते हैं हिंदी में परफ्यूम को, इत्र तो अच्छे अच्छा शब्द है, लेकिन परफ्यूम के लिए कोई शब्द है? हाँ, अतर थोड़ा अच्छा शब्द है, इत्र इत्र है अतर, खैर जो भी है। तो जैसे कई देश हैं जो बड़े प्रसिद्ध हैं परफ्यूम के लिए, उसका कारण यही है लोग नहाते नहीं हैं, सुबह उठते हैं, कपड़े पहनते हैं, पूरा डाला, और जब लोगों के साथ होते लोग बोलते वाह वाह वाह, कितना क्या वाह वाह वाह, इतना गंदा आदमी कितने दिनों से नहाता नहीं है, लेकिन बस खाली परफ्यूम डाल के आ जा रहे हैं। ढोंग धर्म का अनुसरण करते हुए वे फूलेंगे फलेंगे। तो धर्म का अनुसरण, लेकिन ढोंग है धर्म का। क्यों धर्म का ढोंग है? अगर भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान की सेवा नहीं है, हम मूर्ति पूजा को नहीं मानते क्योंकि करना नहीं चाहते सेवा, ये ढोंग है, दिखावा कर रहे हैं भक्ति का। अगर भक्ति है हृदय में तो क्यों नहीं कृष्ण की सेवा करनी है, क्यों नहीं आरती करनी है, क्यों उनको भोग नहीं लगाना है, ढोंग है। तो धर्म का ढोंग करते हैं, इसीलिए हम मंदिर नहीं जाएंगे, हमारे भगवान गरीबों में है, ये ढोंग है धर्म का। क्योंकि गरीबों में से आके तो भगवान आपको उपदेश नहीं देंगे ना कहीं देते हैं, गरीब आके बोलेंगे तुम ये गलत कर रहे हो, नहीं, गरीब तो बोले आप महाराज, आप तो भगवान हैं, आप भगवान हैं, इसलिए गरीब मेरे भगवान हैं क्योंकि वो मुझे भगवान मानते हैं। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो शास्त्र बोलता है, मंदिर आते हैं, उपदेश मिलते हैं, ये नहीं करना, ये तुम गलत कर रहे हो, अहंकार त्यागो, धन का आसक्ति त्यागो, सेवा करो भगवान की, तो वो सब पसंद नहीं, इसीलिए ढोंग है ये। तो धर्म का ढोंग करते हैं और ऐसे लोग फूलेंगे फलेंगे कलयुग में। देखिए ऐसा होता है, कई लोग जो धर्म का ढोंग करते हैं, प्रवचन करते हैं, हजारों लोग उनको सुनने आते हैं, तो कभी कभी हमें भी लगता है कि अरे हम लोग इतना भगवान के बारे में बोल रहे हैं, 15 लोगों को बुलाना मुश्किल होता भागवत क्लास में, है ना, रोज वो भी समय पे नहीं आते, आज तो आए थे खैर, तो और इनके प्रवचनों में हजारों लोग, और ऐसे क्या क्या व्यवस्था होती है पता नहीं, और लाखों रुपया खर्चा हो जाता है। हम लोग तो यह मंदिर चलाने के लिए बड़ा कठिनाई है लेकिन लाखों रुपया खर्चा कर देते हैं 4 दिन की कथा में, और वो स्वामी जी को तो डोनेशन पूछो ही नहीं। तो कभी कभी लगता है हम लोग सही है या गलत है तो हमें देखना चाहिए, दो बाजारों की तुलना कर लेनी चाहिए, एक मच्छी का बाजार और एक हीरे का बाजार। तो मच्छी का बाजार होता है, वहां क्या होता है, बहुत भीड़ होती है, कच 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 चलता रहता है, मच्छी ये दे दो वो दे दो, कितनी बातें। और जो हीरे की दुकान में आप जाइए जहां हीरा बिकता है, खाली पड़ा है, कोई नहीं है हमारे एक पहचान वालों ने एक बार हीरे की दुकान खोली थी, तो हम जब भी वहां से जाते थे तो खाली पड़ा हुआ, करते क्या है, कैसे कमाई होती है, क्योंकि हीरा खरीदने की सब में क्षमता नहीं है। तो हीरे की दुकान में मच्छी बाजार जैसी भीड़ नहीं होती कि लोग खड़े रहते, लाओ लाओ मुझे वो दे दो, वो 75,000 वाला मुझे दो, 3 लाख वाला मुझे दो, वो कोई नहीं है। तो मच्छी बाजार में होता है 10 रुपए नहीं 20 रुपए में। तो ऐसे हमें सोचना चाहिए कि जब हमें ऐसे मन में आ जाए कि उनकी इतनी भीड़ है और हमारे कोई नहीं, तो हमें सोचना चाहिए वो मच्छी बाजार है, मच्छी बाजार में भीड़ होगी होगी, क्योंकि वहां क्या मिलने वाली है, मच्छी, गले में कांटा फंसेगा मर जाओगे, बस उतना ही होना है। लेकिन जो हीरा है वो यहाँ है, इसलिए बहुत कम लोग जो उसका मूल्य दे पाते हैं वो लोग केवल यहाँ आते हैं। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि ढोंग करेंगे धर्म का और वो लोग फलेंगे फूलेंगे, बहुत होगा। इस कली काल में लोग अधार्मिक पद्धतियों की ओर अधिक उन्मुख होंगे। देखिए कितना सत्य कब कह दिया सुखदेव गोस्वामी ने, तब तो ये सब नहीं था, जब उस समय ये सुन रहे होंगे नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इस सबको, या परीक्षित महाराज के साथ बैठे हुए जितने ऋषि मुनि गंगा के तट पर सुन रहे होंगे, तो वो सोच रहे होंगे क्या कह रहे हैं ये सुखदेव गोस्वामी, कहीं थोड़ा धूप में बैठने से 7 दिन खाने ना पीने से कुछ हो तो नहीं गया इन्हें, ये कैसे कह सकते हैं किसी को विश्वास नहीं हुआ होगा, लेकिन आज देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमें कोई नया नहीं लग रहा, ये तो सब हो रहा है कलयुग में। तो लोग अधार्मिक पद्धतियों की ओर अधिक उन्मुख होंगे। फलस्वरूप वे वेद, वेदों के अनुयायी ब्राह्मणों, भगवान तथा अनेक भक्तों का उपहास करेंगे। एक एक शब्द सही है, एक एक शब्द। सुखदेव गोस्वामी ने कब कहा, जब ये होता नहीं था, कोई भक्तों का उपहास नहीं करता था, तब तो भक्तों का बड़ा आदर किया जाता था। भक्तों को देखते ही लोग उनके चरण धोते थे, उनके लिए जो कर सकते, अगर गृहस्थ के घर में आ जाएं तो वो लोग अपने आप को धन्य माना करते थे। जैसे उदाहरण है कि जब गर्ग मुनि नंद महाराज के घर में आए तो उन्होंने कहा कि आप जैसे लोग तो तीर्थ हैं चलते फिरते, और आप किसी के घर में अपनी इच्छा से नहीं जाते, उसका उद्धार करने जाते, मेरा बड़ा भाग्य है। और गर्ग मुनि क्या थे, कौन से बड़े व्यक्ति थे, कौन से नंद महाराज को पैसा देने आए थे, कुछ नहीं, एक भिक्षुक। लेकिन उनको तो ये वो समय था, और उस समय पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ये लोग आगे चलकर वेद, वेद के अनुयायी ब्राह्मण और भगवान और उनके भक्तों का उपहास करेंगे। ये लोग सब बेकार है, दिन भर हरे कृष्णा करते रहते, कुछ काम धाम है नहीं इनको, तो ये भक्त उपहास करेंगे भक्तों का। तो सुखदेव गोस्वामी ने पहले ही कह दिया। तो ये सब पढ़कर आप लोग विचलित मत होइएगा, जब कोई आपको ऐसा कहे तो कह दीजिएगा पता है सुखदेव गोस्वामी ने आप जैसे लोगों के लिए पहले ही वर्णन कर रखा है, हमें कोई चिंता नहीं। तो भक्तों का उपहास करेंगे, ऐसे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। तो ये कलयुग के लक्षण उन्होंने दिए कि कैसे, तो ये करीब 9 से 12 श्लोक तक वो वर्णन करते हैं कि कलयुग में क्या होगा, लोग कैसे धर्म को त्यागेंगे, झूठे धर्म को स्वीकार करेंगे, और अरहत की कथा देते हुए उन्होंने बताया कि कैसे ये धर्म फूलेगा फलेगा। तो वे लोग, वैसे प्रभुपाद लिखते हैं कि जो जैन धर्म के अनुयायी हैं वे ऋषभ देव को अपना मूल मानते हैं, कि ऋषभ देव हमारे आधार है, वो इन्होंने जैन धर्म, ऋषभ देव ने नहीं की, ये अरहत ने की है। और प्रभुपाद लिखते हैं कि जैन धर्म में कोई गलती नहीं है अगर वो ऋषभ देव को माने, अगर वो ऋषभ देव की शिक्षाएं, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जो पिछले अध्याय में ऋषभ देव ने शिक्षाएं दी हैं, अगर जैन धर्म ये मानता है कि ऋषभ देव हमारे प्रणय करता है, ऋषभ देव हमारे आंदोलन को शुरू करने वाले, धर्म को शुरू करने वाले हैं, और अगर उनकी शिक्षाओं को माने तो निश्चित मुक्त हो जाएंगे, तो धर्म में कोई गलती नहीं। लेकिन ऋषभ देव की शिक्षाओं को कहाँ मानते हैं, कहाँ, ये सब जो वर्णन कर रहे हैं वो ऋषभ देव की शिक्षाएं नहीं है। तो ऐसे उन्होंने कलयुग का वर्णन किया, और उसके बाद अंत में वे लोग सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं ऋषभ देव के कार्यों का, और उनका गुणगान करते हैं कि किस तरह ऋषभ देव बड़े महान हैं, जो उन्होंने एक उदाहरण बड़े बड़े योगियों के लिए प्रस्तुत किया कि कैसे एक योगी को होना चाहिए। अपनी शिक्षाओं के द्वारा उन्होंने ज्ञान दिया, अपने आचरण से उन्होंने दिखलाया, केवल शिक्षा नहीं दी, आचरण से दिखलाया कि कैसे विरक्त होना चाहिए, कैसे व्यक्ति को अपना देह त्यागना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो कोई भी ऋषभ देव के इस वर्णन को पढ़ता है, जैसे उससे पहले उन्होंने कहा कि ऋषभ देव प्रकट हुए, और इसी प्रकार भारत भूमि में, ये बड़ी प्रसिद्ध या बड़ी पावन भूमि है, प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि जिसने भी भारत भूमि ते जन्म हैल जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार, जिसने भी भारत भूमि में जन्म लिया है उसके 2 कर्तव्य हैं, एक जन्म सार्थक करी, अपने जन्म को सार्थक करना चाहिए भगवान की भक्ति के द्वारा, और दूसरा कर पर उपकार, प्रचार करना चाहिए। तो जिसने भी भारत में जन्म लिया है भगवान की भक्ति में लगे और प्रचार करे। प्रभुपाद लिखते हैं कि कितनी आवश्यकता है, तो इसलिए तात्पर्य में लिखते हैं कि हर भक्त को दुनिया भर में प्रचार करना चाहिए। दुनिया के लोग चाहते हैं कृष्ण भावनामृत, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा कि मैं तो एक ही माली हूं, मैंने थोड़ा बहुत ऐसे फैला दिया, अगर सब लोग मिलकर करें तो कितना फैल जाएगा। प्रभुपाद ने कहा मैं एक अकेला बूढ़ा व्यक्ति, मैंने जाकर इतना सारा प्रचार कर दिया, अगर आप सब भारत के लोग मिलकर प्रचार करें तो सारी दुनिया कृष्ण भावना भावित हो सकती है बहुत जल्दी। तो इसीलिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ये कर्तव्य है हमारे कि हम अपने जीवन को सार्थक करें और फिर दूसरों को ये ज्ञान बांटें। और अंत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो कोई भी ऋषभ देव के इन कार्यकलापों को, इन शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं, उनको सुनते हैं केवल, तो वे सब भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करते हैं। तो जो बोलता है, जो सुनते हैं, वो सब भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। समय काफ़ी हुआ है इसलिए प्रश्नोत्तर नहीं करेंगे। अगले अध्याय से, कल से हम लोग महाराज भरत का वर्णन करने वाले हैं। आगे के अध्यायों में, कुछ अध्यायों में महाराज भरत का वर्णन होगा, बहुत महत्वपूर्ण है, कल से इसको प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंद।